एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने वाकई दुनिया भर में लाखों लोगों पर गहरा असर डाला है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स।
हाँ, जिसे एलेक्स हेली के सहयोग से लिखा गया था, और दिलचस्प बात यह है कि ये मैल्कम एक्स की हत्या के बाद 1965 में छपी।
बिल्कुल, और आते ही मतलब अमेरिकी साहित्य और समाज पर इसकी एक गहरी छाप पड़ी। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस दौर के अमेरिका, मतलब 20वीं सदी के अमेरिका में नस्ल, पहचान, संघर्ष, इन सब की कहानी है।
और इस कहानी के केंद्र में है मैल्कम एक्स, जिनका असली नाम मैल्कम लिटिल था।
जी, और बाद में वो अल हज मलिक अल शबाज के नाम से जाने गए। 1925 में नेब्रास्का में जन्म हुआ, और सिर्फ 39 साल की उम्र में 1965 में न्यूयॉर्क में उनकी हत्या कर दी गई। वो एक बहुत प्रभावशाली, कह सकते हैं, अमेरिकी मुस्लिम मंत्री थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता और नागरिक अधिकार आंदोलन के भी एक थोड़े विवादास्पद लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चेहरे थे।
सही कहा, विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण। और उनकी कहानी में जो सबसे खींचने वाली बात है वो शायद उसका नाटकीय बदलाव है।
हाँ, वो सफर कहाँ, मतलब सड़कों पर छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत,
और कहाँ फिर वो बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये किताब नस्लवाद की जो क्रूर सच्चाई है और अपनी पहचान की तलाश और इंसान के बदलने की जो असीम संभावना है उसको बड़ी बेबाकी से सामने रखती है।
बिल्कुल, एक तरह से ये अमेरिका को उसके अपने नैतिक विरोधाभासों का आईना दिखाती है।
और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी जरूरी लगती है ना? ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देती है।
हाँ, और खुद को शिक्षित करने की ताकत, और लगातार सीखते रहने, बदलते रहने की प्रेरणा। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, आसान नहीं था बिल्कुल भी।
हाँ बिल्कुल नहीं। ओमाहा नेब्रास्का में जन्म, 19 मई 1925। पिता थे अर्ल लिटिल, एक बैप्टिस्ट उपदेशक, और वो मार्कस गार्वी के विचारों के बड़े समर्थक थे।
अच्छा, मार्कस गार्वी जो अश्वेत लोगों के आत्मसम्मान और अफ्रीका वापसी की बात करते थे।
हाँ वही। और माँ लुइस लिटिल ग्रेनाडा से थीं। अब पिता की सक्रियता की वजह से परिवार को लगातार मतलब कुक्लक्स क्लैन जैसे जो श्वेत वर्चस्ववादी समूह थे उनकी धमकियां मिलती थीं, हमले होते थे।
माहौल काफी तनाव और डर करा होगा।
बहुत ज्यादा। और फिर जब मैल्कम सिर्फ 6 साल के थे उनके पिता की मृत्यु हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में।
हाँ, आधिकारिक तौर पर तो इसे स्ट्रीट कार दुर्घटना बताया गया,
लेकिन परिवार को और समुदाय को भी हमेशा शक रहा कि ये केकेके या वैसे ही किसी समूह की हत्या थी। और इस घटना ने तो जैसे परिवार पर पहाड़ तोड़ दिया।
जाहिर, परिवार गरीबी में चला गया।
हाँ, और पिता की मृत्यु और वो लगातार नस्ली दबाव, इन सब का असर माँ लुइस लिटिल के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ा। आखिरकार जब मैल्कम 13 साल के थे उनकी माँ को एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराना पड़ा।
ओ, और बच्चे?
बच्चे बिखर गए, अलग अलग पालक घरों में भेज दिए गए। ये उनके जीवन का एक बहुत बहुत बड़ा सदमा था।
इन मुश्किल हालात के बावजूद सुनने में आता है कि मैल्कम स्कूल में काफी होनहार थे।
हाँ थे, मिशिगन के मेसन में जहाँ वो ज्यादातर श्वेत बच्चों के साथ पढ़ते थे वो अपनी क्लास के टॉप छात्रों में थे, क्लास प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। उनमें पढ़ने की, आगे बढ़ने की इच्छा थी, लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया।
वो 8वीं कक्षा वाली घटना?
हाँ वही। उनके एक पसंदीदा श्वेत अंग्रेजी शिक्षक थे मिस्टर ऑस्ट्रोव्स्की। उन्होंने पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैल्कम ने कहा वकील।
और शिक्षक का जवाब?
शिक्षक ने कहा देखो, ये एक नीग्रो के लिए यथार्थवादी लक्ष्य नहीं है, तुम्हें कुछ हाथ का काम सीखना चाहिए जैसे बढ़ई बनना।
ओह, ये तो सिर्फ निराशाजनक नहीं था।
नहीं बिल्कुल नहीं, ये उस छिपे हुए संस्थागत नस्लवाद का प्रतीक था जो उत्तर में भी उतना ही था जितना दक्षिण में, शायद ज्यादा कपटी। इसने मैल्कम के सपनों को और व्यवस्था में उनके भरोसे को मतलब चकनाचूर कर दिया।
इसका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा।
हाँ बहुत। उनका औपचारिक शिक्षा से मोह भंग हो गया। उन्हें लगा कि ये श्वेत समाज उन्हें कभी बराबरी का मौका देगा ही नहीं, चाहे वो कितने भी काबिल क्यों ना हो। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और बॉस्टन चले गए अपनी सौतेली बहन एला के पास।
बॉस्टन में क्या हुआ, क्या वहाँ चीजें बेहतर हुई?
एला ने तो कोशिश की उन्हें एक सम्मानित मध्यम वर्गीय जीवन देने की, लेकिन मैल्कम का खिंचाव रॉक्सबरी की जो ज्यादा जोशीली और थोड़ी खतरनाक स्ट्रीट लाइफ थी उसकी तरफ हुआ। वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे
जहां नियम अलग थे।
हाँ, जहां नियम अलग थे, और यहीं से उनका वो दूसरा रूप सामने आने लगा। उन्होंने अपने बालों को कॉन्क करवाना शुरू किया।
कॉन्क, वो केमिकल से बाल सीधे करने वाला?
हाँ, जो उस समय अश्वेत पुरुषों में काफी लोकप्रिय था, लेकिन बाद में मेलघम ने इसे खुद आत्मघृणा का प्रतीक माना। उन्होंने भड़कीले जूट सूट पहनने शुरू किए।
जूट सूट, वो लंबे कोट और ढीली पैंट वाले?
जी, जो उस समय के जैज कल्चर से जुड़े थे। वो गलियों की भाषा सीख गए, जुआ, दलाली, छोटे मोटे अपराध। उनके हल्के लाल रंग के बालों की वजह से उनका नाम पड़ गया डिट्रॉइट रेड।
और ये रास्ता उन्हें कहाँ ले गया?
ये रास्ता उन्हें बोस्टन से न्यूयॉर्क हालिम तक ले गया, और वो अपराध की दुनिया में और गहरे धंसते चले गए। ड्रग्स बेचना, जुआ चलाना, चोरी, डकैती, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया।
यहाँ तक कि उन्होंने बोस्टन में अमीर श्वेत लोगों के घरों में चोरी करने वाले गिरोह का नेतृत्व भी किया, ऐसा पढ़ा मैंने।
हाँ, ये सच है। वो उनके जीवन का शायद सबसे अंधकारमय दौर था। वो खुद उस दौर को मानसिक रूप से मृत बताते हैं।
लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं चला।
नहीं, 1946 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और 8 से 10 साल की जेल की सजा हुई।
जेल में उनका रवैया कैसा था शुरू में?
शुरू में तो बहुत विद्रोही, गुस्सैल। वो ईश्वर को, धर्म को, सबको कोसते थे। इसी वजह से दूसरे कैदी उन्हें शैतान कहने लगे थे।
तो जेल, जो अक्सर अंत लगता है, वो उनके लिए एक नई शुरुआत बन गई।
यहीं वो दूसरा अहम मोड़ आया है ना। बिल्कुल, चार्ल्सटाउन स्टेट जेल में थे जब उनके भाई रेजिनल्ड उनसे मिलने आए। रेजिनल्ड उस समय नेशन ऑफ इस्लाम NOI में शामिल हो चुके थे।
अच्छा।
हाँ, और उन्होंने मेलकम को उसके नेता एलिजा मोहम्मद और NOI की शिक्षाओं के बारे में बताया।
और NOI का संदेश क्या था उस वक्त?
उनका मुख्य संदेश था कि श्वेत लोग शैतान हैं जिन्होंने अश्वेत लोगों पर जुल्म किया है, कि अश्वेत लोग ही पृथ्वी के मूल और श्रेष्ठ निवासी हैं और इतिहास का हिसाब बराबर होने वाला है। अब ये बातें मेलकम के अपने अनुभवों से, खासकर नस्लवाद और धोखे के अनुभवों से सीधी जुड़ गई।
हाँ, मतलब उनके गुस्से को, उनकी पीड़ा को एक दिशा मिल गई, एक स्पष्टीकरण मिल गया।
बिल्कुल, और सबसे अहम बात, इसने उन्हें आत्म सुधार के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगा कि उनकी पिछली जिंदगी तो अज्ञानता और खुद को तबाह करने वाली थी।
तो उन्होंने जेल को ही अपना स्कूल बना लिया।
हाँ, कह सकते हैं उन्होंने जेल को अपना विश्वविद्यालय बना लिया। पढ़ने लिखने की जो उनकी दबी हुई इच्छा थी, वो पूरी ताकत से जाग उठी। शब्दों का मतलब जानने के लिए उन्होंने हाथ से पूरा शब्दकोश नकल कर डाला।
पूरा शब्दकोश? हाँ, हाथ से?
हाँ, सोचिए, उन्होंने जेल की लाइब्रेरी में घंटों बिताए, इतिहास, दर्शन, धर्म, जो मिला पढ़ डाला। जेल की डिबेट टीम में हिस्सा लिया और अपनी तर्क शक्ति और बोलने की कला को मांझा।
तो वो शैतान से ज्ञानी, अनुशासित व्यक्ति बन रहे थे।
बिल्कुल, एक मुखर व्यक्ति बन रहे थे।
फिर 1952 में वो रिहा हुए, 6 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद।
हाँ, परोल पर। और जब वो बाहर आए तो वो एक पूरी तरह बदले हुए इंसान थे। वो सीधे डिट्रॉइट गए और पहली बार एलिजा मोहम्मद से मिले।
ये मुलाकात कैसी रही?
ये उनके लिए एक और निर्णायक पल था। वो एलिजा मोहम्मद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और खुद को पूरी तरह नेशन ऑफ इस्लाम के लिए समर्पित कर दिया। यही उन्होंने अपना उपनाम लिटिल छोड़ा,
जिसे वो गुलामी का नाम मानते थे।
हाँ, और उसकी जगह एक्स लगा लिया। ये एक्स उस खोए हुए अफ्रीकी नाम का प्रतीक था जो गुलामी ने उनके पुरखों की पहचान से मिटा दिया था।
और फिर मेलकम एक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनमें गजब की क्षमता थी, संगठन बनाने की, लोगों को जोड़ने की।
हाँ, और अपनी बात रखने की। वो NOI के लिए अथक रूप से काम करने लगे।
उन्होंने नई मस्जिदें, या मंदिर जैसा NOI कहता था, स्थापित की बोस्टन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क।
हाँ, पूरे देश में। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे। उसमें धार्मिक शिक्षाएं तो होती थीं, साथ में श्वेत वर्चस्व की तीखी आलोचना और अश्वेत गौरव का जबरदस्त आवाहन होता था। हजारों लोग खिंचे चले आते थे।
देखते ही देखते NOI की सदस्यता बहुत तेजी से बढ़ी।
हाँ, और मेलकम एक्स टेलीविजन पर बहस करने वाले, विश्वविद्यालयों में बोलने वाले NOI के सबसे जाने माने चेहरे बन गए। 1950 के दशक के अंत तक वो एलिजा मोहम्मद के सबसे भरोसेमंद साथी और संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे।
लेकिन ये जो वफादारी और कामयाबी का दौर था, ये हमेशा नहीं चला। 1960 के दशक की शुरुआत में कुछ तनाव पैदा होने लगा, NOI के अंदर भी और मेलकम एक्स के विचारों में भी।
जी, इसके कई कारण थे। एक तो मैल्कम खुद नागरिक अधिकार आंदोलन में सीधी कार्रवाई की कमी से थोड़े निराश हो रहे थे। एनओआई ज्यादातर अलगाव और बातों तक ही सीमित था। दूसरा और शायद सबसे बड़ा झटका, जब उन्हें अपने गुरु इलाइजा मोहम्मद के बारे में पता चला कि वो संगठन की कई युवा महिला सदस्यों के साथ मतलब यौन संबंधों में लिप्त थे। ये एनओआई के अपने सख्त नैतिक नियमों का खुला उल्लंघन था।
ये तो बहुत बड़ा धक्का लगा होगा उन्हें।
हाँ, बहुत। तीसरा कारण ये भी था कि मैल्कम की अपनी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी, मीडिया में वो छाए रहते थे। इससे संगठन के अंदर कुछ लोगों में जलन पैदा होने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि इलाइजा मोहम्मद खुद उनसे खतरा महसूस कर रहे हैं।
और फिर वो एक विवादित टिप्पणी आई जिसने शायद आग में घी का काम किया।
हाँ, नवंबर 1963 में जब राष्ट्रपति केनेडी की हत्या हुई, उसके बाद एक सवाल के जवाब में मैल्कम ने कह दिया कि ये चिकन्स कमिंग होम टू रूस्ट का मामला है, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
हालांकि उन्होंने बाद में समझाने की कोशिश की।
हाँ, की, लेकिन इस बयान पर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत हंगामा हुआ और एलिजा मोहम्मद ने इसी मौके का फायदा उठाकर मैल्कम को 90 दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से बोलने पर पाबंदी लगा दी। कहा तो ये गया कि उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन मैल्कम समझ गए थे कि ये उन्हें किनारे लगाने की चाल है।
और इसी सब के बीच उन्होंने वो बड़ा फैसला लिया।
जी हाँ, मार्च 1964 में मैल्कम एक्स ने नेशन ऑफ इस्लाम से अलग होने की घोषणा कर दी। ये बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन जरूरी भी हो गया था।
और इसके फौरन बाद उन्होंने एक और अहम सफर शुरू किया।
बिल्कुल, अप्रैल 1964 में वो हज यात्रा के लिए मक्का गए, इस्लाम के 5 तंबों में से एक।
और ये यात्रा उनके जीवन का तीसरा और शायद सबसे गहरा बदलाव लाने वाली साबित हुई। क्या खास हुआ मक्का में?
मक्का में उन्होंने जो देखा उसने एनओआई की जो नस्लीय विचारधारा थी, खासकर वो श्वेत शैतान वाली बात, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया।
कैसे?
उन्होंने देखा कि दुनिया भर से आए मुसलमान, गोरे काले भूरे पीले सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी भेदभाव के एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे थे। उन्हें वहां भाईचारे और बराबरी का जो अनुभव हुआ, वैसा उन्होंने अमेरिका में कभी महसूस नहीं किया था।
इस अनुभव ने उनके नजरिए को पूरी तरह बदल दिया होगा।
पूरी तरह। इसने उन्हें पारंपरिक रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम की तरफ खींचा। उन्होंने समझा कि इस्लाम तो सभी इंसानों की एकता सिखाता है, किसी एक नस्ल की श्रेष्ठता नहीं। नस्लवाद को अब वो एक वैश्विक समस्या की तरह देखने लगी, न कि सिर्फ श्वेत लोगों की बुराई के तौर पर।
और वो मैल्कम एक्स से अलहाज मलिक अलशबाज बन गए।
जी, जो उनके इस नए आध्यात्मिक और वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतीक था।
फिर वो अफ्रीका और मध्य पूर्व की यात्रा से लौटे और अमरीका में 2 नए संगठन बनाए। एक धार्मिक मुस्लिम मस्जिद इंक
अंतर्राष्ट्रीय हो गया था।
OAU का मकसद क्या था?
उसका मकसद था अश्वेत अमेरिकियों के संघर्ष को सिर्फ नागरिक अधिकारों की लड़ाई तक सीमित न रखकर उसे मानव अधिकारों की वैश्विक लड़ाई से जोड़ना। वो अफ्रीकी देशों का समर्थन चाहते थे और अमेरिका में अश्वेतों पर हो रहे जुल्मों के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहते थे।
लेकिन जाहिर है उनका ये नया रास्ता और एनओआई की आलोचना उनके पुराने साथियों को पसंद नहीं आई होगी।
बिल्कुल नहीं, वो उनके जानी दुश्मन बन गए। उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगीं, उनके घर पर बम भी फेंका गया।
और फिर वो दिन आ गया, 21 फरवरी 1965।
हाँ,
मैनहट्टन का ऑडुबोन बॉलरूम।
वो OAU की सभा को संबोधित करने मंच पर आए ही थे कि सामने से 3 बंदूकधारी, जिन्हें एनओआई से जुड़ा माना जाता है, उन्होंने गोलियां चला दी।
उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन
बचाया नहीं जा सका। सिर्फ 39 साल की उम्र में एक ऐसी आवाज खामोश कर दी गई जो लगातार सीख रही थी, बदल रही थी और अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी।
उनकी हत्या यकीनन एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन उनकी विरासत, खासकर उनकी आत्मकथा के जरिए, आज भी जिंदा है। चलिए अब थोड़ा उनके मूल दर्शन और मूल्यों पर बात करते हैं। उनका वैचारिक सफर काफी पेचीदा रहा।
हाँ, उसे मोटे तौर पर 2 चरणों में देख सकते हैं। पहला, एनओआई वाला चरण, जो नस्लीय अलगाववाद पर आधारित था,
जिसमें मुख्य बातें थी श्वेत शैतान हैं, अश्वेत मूल और श्रेष्ठ हैं, और अश्वेतों को अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहिए।
बिल्कुल, और ये विचारधारा उस समय के गहरे नस्लीय अन्याय और हताशा के माहौल में कई अश्वेत अमेरिकियों के लिए मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सशक्त करने वाली थी। उन्हें आत्मसम्मान और गौरव का भाव देती थी। आत्मनिर्भरता और सख्त नैतिक अनुशासन पर इसमें बहुत जोर था।
और दूसरा चरण एनओआई छोड़ने के बाद, खासकर मक्का यात्रा के बाद का।
हाँ, वो काफी अलग था। इस बात के चरण में उनका नजरिया बहुत ज्यादा सार्वभौमिक यूनिवर्सल हो गया। उन्होंने इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को अपनाया जिसमें नस्लीय एकता पर जोर है। उन्होंने माना कि नस्लवाद एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की बीमारी है, ये किसी एक नस्ल की अंतर्निहित बुराई नहीं है।
तो उन्होंने अश्वेत राष्ट्रवाद को पूरी तरह छोड़ दिया।
छोड़ा नहीं, कह सकते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के ज्यादा बड़े दायरे से जोड़ा। वो अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन को दुनिया भर के जो उपनिवेशवाद विरोधी और मुक्ति आंदोलन चल रहे थे उनके साथ जोड़कर देखना चाहते थे।
क्या चीजें थी जो उन्हें चलाती थी? उनकी प्रेरणाएं कैसे बदली वक्त के साथ?
शुरू में तो शायद बस सर्वाइवल था, पहले मनोवैज्ञानिक फिर शारीरिक। अपराध के दिनों में शायद वो दिखावटी इज्जत और पैसा कमाने की इच्छा थी। एवाई में शामिल होने के पीछे गहरे अर्थ की तलाश थी, कहीं अपने पन की भावना और मुक्ति की एक तीव्र इच्छा थी। और अंत में उनका सबसे बड़ा मकसद बन गया था सभी इंसानों के लिए न्याय, गरिमा और बराबरी पर आधारित एक बेहतर दुनिया बनाना।
और उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना कैसे किया? क्या खासियत थी उनमें?
उनका पूरा जीवन ही मुश्किलों को मौकों में बदलने का उदाहरण है। वो रिएक्ट करने वाले से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव बने, विनाशकारी चीजों से निकलकर रचनात्मक दिशा में गए। जेल को उन्होंने सीखने और खुद को बदलने की जैसे लैब बना दिया।
हाँ, ये तो है।
और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बौद्धिक ईमानदारी। वो अपने गहरे विश्वासों पर भी सवाल उठाने और सच सामने आने पर उन्हें बदलने से हिचकाते नहीं थे।
ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ, उनमें अन्यायपूर्ण सीमाओं को मानने से इनकार करने का साहस था, रणनीतिक सोच थी और इंसान के बदलने की ताकत में एक अटूट विश्वास था।
उनकी जिंदगी में कई अहम मोड़ आए, लेकिन अगर तीन सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी दिशा बिल्कुल बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
पहला तो मैं कहूंगी 1940 का वो वाक्या, आठवीं कक्षा में उनके शिक्षक मिस्टर ऑस्ट्रोवस्की की वो बात कि वकील बनना उनके लिए अवास्तविक है।
इस एक घटना का इतना गहरा असर क्यों?
क्योंकि इसने उस उम्मीद को तोड़ दिया कि मेहनत और काबिलियत से वो मौजूदा सिस्टम में इज्जत पा सकते हैं। इसने उन्हें उत्तर के उस छिपे हुए कपटी नस्लवाद का एहसास कराया। इसने सिस्टम पर उनके भरोसे को खत्म कर दिया और कहीं ना कहीं उन्हें उस रास्ते पर धकेला जो उन्हें सड़कों और फिर जेल तक ले गया। ये उनके मोहभंग की, डिसिल्यूजनमेंट की शुरुआत थी।
समझ गया। दूसरा निर्णायक मोड़।
वो निश्चित रूप से 1948 के आसपास जेल में उनका नेशन ऑफ इस्लाम की शिक्षाओं से परिचय और उनका बदलना, रूपांतरण।
इसका क्या असर हुआ?
इसने उन्हें न सिर्फ जीने का एक नया मकसद दिया बल्कि उनके बिखरे हुए जीवन को समझने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क दे दिया। इसने उनके गुस्से और दर्द को एक पॉजिटिव दिशा दी। यहीं से उनकी वो गहन आत्म शिक्षा की यात्रा शुरू हुई जिसने उन्हें एक असाधारण वक्ता और विचारक बनाया।
शैतान से नलकमिक्स बनने का सफर।
हाँ बिल्कुल, इसने उनके भविष्य के नेतृत्व की नींव रखी। ये उनका बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म था।
और तीसरा और शायद सबसे मशहूर मोड़,
वो थी 1964 में उनकी मक्का की हज यात्रा,
जब उन्होंने सभी नस्लों के मुसलमानों को एक साथ बिना भेदभाव के इबादत करते देखा।
बिल्कुल, उस अनुभव ने एनओआई की नस्लीय अलगाववादी विचारधारा की जड़ें हिला दी। श्वेत शैतान वाली बात उनके लिए बेमानी हो गई। इसने उन्हें सच्चे इस्लाम की सार्वभौमिकता और मानव भाईचारे की संभावना का सीधा सबूत दिया। ये उनके जीवन का आखिरी और सबसे गहरा वैचारिक परिवर्तन था। इसने उन्हें ग्लोबल मानवाधिकार नेता बनने की राह पर डाला।
मैल्कम एक्स की इस असाधारण और हाँ जटिल कहानी से आज हम क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं? ये हमें अपने बारे में, जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है?
सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली सबक है व्यक्तिगत बदलाव की असीम संभावना। मैल्कम का जीवन ये जोर देकर कहता है कि आपका अतीत, आपकी गलतियां या आपके हालात आपको हमेशा के लिए बांधकर नहीं रख सकते।
हाँ, ये उम्मीद बंधाता है।
बिल्कुल, शिक्षा, आत्म अनुशासन और बदलने की इच्छा से कोई भी इंसान खुद को पूरी तरह बदल सकता है।
और क्या सबक है?
दूसरा अहम सबक है बौद्धिक ईमानदारी का, अपने सबसे गहरे विश्वासों पर भी सवाल उठाने का साहस रखना और नए सबूत या अनुभव सामने आने पर अपनी सोच बदलने को तैयार रहना। मैल्कम ने यह बार बार किया, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना रहा हो।
तीसरा, शिक्षा की मुक्तिदायक शक्ति।
हाँ, उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे आत्म शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन, व्यक्तिगत और सामूहिक मुक्ति का सबसे ताकतवर हथियार बन सकती है, भले ही सिस्टम आपको नकार दे। जेल की कोठरी भी ज्ञान का मंदिर बन सकती है।
और सिद्धांतों के लिए खड़े होने का साहस।
हाँ बिल्कुल, सच और न्याय के लिए अकेले खड़े होने का नैतिक साहस, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। साथ ही ये समझना कि हमारे स्थानीय संघर्ष अक्सर वैश्विक अन्याय की बड़ी तस्वीर का हिस्सा होते हैं।
और आखिर में शायद ये भी कि नस्लवाद जैसी चीजों का मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा होता है।
जी बिल्कुल, प्रणालीगत नस्लवाद के गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव और आत्मसम्मान व गरिमा के लिए लगातार संघर्ष का महत्व, ये सब उनकी कहानी से उभर कर आता है।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर हमें तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों, एक भावनात्मक, एक भौतिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
भावनात्मक स्तर पर शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने और अपने समाज के बारे में कड़वी सच्चाइयों का सामना करना डरावना नहीं बल्कि आजाद करने वाला हो सकता है। मैल्कम की कहानी दिखाती है कि ईमानदारी से अपनी कमजोरियों और समाज की बुराइयों को मानना हमें आजाद करता है। उनकी बेबाकी ही उनकी ताकत थी।
ये बहुत गहरा है। और बौद्धिक स्तर पर?
बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये है कि हमारी राजनैतिक और सामाजिक चेतना कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये व्यक्तिगत अनुभवों, गहरे अध्ययन और बदलते दुनिया के साथ लगातार विकसित होती है, इवॉल्व होती है। मैल्कम का जीवन दिखाता है कि अनुभव और ज्ञान हमारी सोच को कैसे जड़ से बदल सकते हैं, और ये बदलाव कमजोरी नहीं बल्कि विकास का संकेत है।
और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक जो हम सब अपने जीवन में उतार सकें।
सबसे जरूरी सार्वभौमिक सबक शायद ये है, जीवन भर सीखते रहने, बढ़ते रहने और बदलते रहने का साहस बनाए रखना। जो धारणाएं आरामदायक हैं लेकिन गलत साबित हो रही हैं, उन्हें छोड़ने की हिम्मत रखना।
सिद्धांतों के लिए आराम और सुरक्षा को दांव पर लगाने से न डरना।
हाँ, और अपनी आखिरी सांस तक ज्ञान और सच्चाई की तलाश जारी रखना। मैल्कम एक्स का जीवन इसी निरंतर विकास, साहस और सत्य की खोज का प्रतीक है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।